ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் ப்ரெசன்டட் பை சுவாமிஜி ஸ்ரீ தத்ரூபானந்த்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஹரி ஓம். பூஜ்ய மகாராஜ் வந்தன். पूज्य महाराज जी परसों से प्रेमपुरी के आश्रम के साथ प्रवचन के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जब भी आप पधारते हैं तो जो प्रातः प्रवचन में थोड़े थोड़े यंगस्टर्स भी आने लगते हैं तो बहुत खुशी होती है. और महाराज जी जितने भी आप वक्त प्रेमपुरी आश्रम को देंगे उतना यहां आनंद रहेगा सबको कि इतनी सुंदर बातें जो आप द्वारा हमेशा मिलती है और हमें ग्रहण करने में आनंद आता है वो हमेशा मिलता रहे. ईश्वर से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं. पूज्य महाराज जी दक्षिणामूर्ति सूत्र पर जो प्रवचन करेंगे 31 तारीख तक प्रतिदिन प्रातः पूज्य महाराज जी द्वारा ये पुनित लाभ हमें मिलेगा. आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन. हरिओम.
ये मेरा परम सद्भाग्य है कि बार बार ऐसी संस्था में आने का अवसर परमात्मा मुझे संपन्न करवाते रहता है. जैसा कि भाई ने बताया कि हम दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे. भगवतपाद आदि शंकराचार्य की ये एक अद्भुत अलौकिक दिव्य रचना है. ऐसा कहा जाता है कि तत्वबोध से लगाकर ब्रह्म सूत्र तक की सभी बातों का इसमें एक बहुत अच्छा समन्वय किया गया है. आदि शंकराचार्य के नाम से कोई अपरिचित ये समाज में ऐसा नहीं हो सकता है, मगर इनकी रचनाएं ऐसी है कि वो शायद सब लोग उससे परिचित ना हो, ये हो सकता है. तो ऐसी एक अद्भुत रचना है, इसको एक परमोत्कृष्ट काव्य कहा जाता है. और नाम तो इतना अच्छा है, दक्षिणा मूर्ति. उसके ऊपर हम आएंगे धीरे धीरे. मगर सूक्ष्मतम अगर आत्मविचारणा किसको करनी है तो इससे महान स्तोत्र कोई नहीं है. शार्दुल विक्रीडित छंद के द्वारा अभिव्यक्ति इसकी हुई है. महाकाव्यों का गूढ़ार्थ लक्ष्यार्थ इसमें समाविष्ट है. और ऐसे एक छोटे काव्य का अनावरण करने का परमात्मा ने मुझे आज मौका दिया है. वेद स्मृति श्रुतियां शास्त्रों उसका निगूढ़ सार्थक अर्थ जिसमें भरा पड़ा है ऐसा ये एक स्तोत्र है जिसके अर्थों को हम धीरे धीरे अभिप्रेत करने का प्रयास करेंगे. जैसा कि शंकराचार्य आदि शंकराचार्य को अभिप्रेत है उसी ढंग से हम इसमें धीरे धीरे आगे जाएंगे. ये स्तोत्र के अंदर जितने जितने अनिश्वरवादी संप्रदाय है, मतलब कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, नहीं मानते इतना ही नहीं, ईश्वर का विरोध करते हैं, ईश्वर के अस्तित्व का ही स्वीकार नहीं करते हैं. समझी, नाम तो दे दो एक दो. नाम इसलिए नहीं देता हूं कि आप परिचित हो. और वो संप्रदाय बहुत मशहूर है, लाखों की तादाद में भीड़ होती है यहां से बॉम्बे से पुणे जाने की ट्रेन में, और इसी के नाम पर ध्यान के बड़े बड़े शिविर लगाए जाते हैं. मगर वो अनिश्वरवादी है. ऐसा ना होता तो भारत की सरहदों के बाहर आदि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को उठा के फेंक नहीं दिया होता. कंबोडिया में है, सिलोन में है, सिंगापुर में है, ताइवान में है, चीन में है, पूर्व के सब देशों के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार है. पर जहां पर भगवान बुद्ध का 24वां अवतार जिसको कहा जाता है, जिसका जन्म हुआ, वहां पर धर्म का इतना प्रचार नहीं. क्यों? अनिश्वरवादी है. ईश्वर के अस्तित्व को उन्होंने उठा के फेंक दिया, नहीं मानते ईश्वर हम लोग. क्षणिक बुद्धिमान जिसको कहा जाता है, इसकी चर्चा मैं नहीं करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जितने अनीश्वरवादी संप्रदाय हैं वो सबको भारतीय सरहद के बाहर फेंक दिया। आदि शंकराचार्य जी ना होते आज हम सब ईश्वर के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं करते और हम सब बुद्ध होते आज। आज मैं चर्चा में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा विषय आगे है। आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज सर्न, CERN। जगत की सबसे बड़ी खोज सर्न की है और थोड़े अखबार में या टीवी में सबने आपने देखा होगा, और आपको इसमें रस होगा तो देखा होगा कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनीवा, जिनीवा से एक टनल बनाई गई और 27 किलोमीटर लंबी फ्रांस की सरहद के भीतर घुसने वाली, और ऐसी जो एक टनल है खरबों रुपये खर्च करके इसके अंदर प्रयोग किया गया। तीन चीज को हम जानते थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 2000 विश्व के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर प्रयोग था और वो प्रयोग का निष्कर्ष मात्र बताता हूं, मैं विषय के ऊपर आऊंगा तब इसकी चर्चा करूंगा। 50 साल से एक्सपेरिमेंट चल रहा था, 5 तत्व खोज निकाले। 50 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद सदियों से हम तक कहते हैं कि पंचमहाभूत है और 5 ही तत्वों से पिंड और ब्रह्मांड दोनों बने। आज उन्होंने खोजा और देवर इन सर्च ऑफ 6th एटम, और खोजा और उसको नाम दिया गया है गॉड पार्टिकल। आज और सदियों से हमारे जो संप्रदाय ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते नहीं। हिग्स बोसोन कहेंगे तो भी चलेगा, गॉड पार्टिकल कहेंगे तो भी चलेगा, और छठा कहेंगे तत्व तो भी चलेगा, और उसके ऊपर मैं आऊंगा। और परमात्मा मुझे सामर्थ्य शक्ति प्रदान करे ताकि मैं नीचे से लगाकर जो कल खोज हुई है सन की वहां तक आपको समझा सकूं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो स्तोत्र हैं इसमें जितने अनीश्वरवादी संप्रदाय हैं, अनीश्वरवादी विचारधाराएं हैं, वो सब अंधत्व का संहार आदि शंकराचार्य जी ने वो समय में किया था। उनको पता था कि ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे, वो समय में भी थे और अभी भी मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द आसपास, होला कोलाहल उनका चल रहा है। ये जो हमारा छोटा स्तोत्र है उसका विषय रहेगा जीव और ब्रह्म का ऐक्य प्रतिपादन करना और समाज को अभेद तत्व का दर्शन करवाना, और यही वेदों का निष्कर्ष है, सार है। ये प्रथम श्लोक है, इसमें महावाक्यकार प्रथम श्लोक में ही महावाक्य का संदेश दिया गया है, उपनिषद का जो महान उपदेश है वो। और इसमें जब बातें आती है यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय, यह मतलब वो जीवात्मा की बात है। जीवात्मा की बात है मतलब महावाक्य का जो एक तत्पद एक त्वम पद है, तो त्वम पद की बात वहां पर आएगी। और फिर जब आएगा आगे कि प्रबोध समय वो साक्षात्कार, यद साक्षात कुरुते, तो जिसका साक्षात्कार होता है वो तत्पद होता है। ये तो गहन चर्चा है बाद में, पर मैं आपको निष्कर्ष प्रारंभ में बता रहा हूं कि ये स्तोत्र के अंदर मात्र प्रथम श्लोक के द्वारा ही तत्वमसी महावाक्य की गहन चर्चा हमें देखने मिलने वाली है। और जो कोई ये तत्व का साक्षात्कार करेगा उसको मानेंगे और उसको प्रणाम भी करेंगे। तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमइदम् श्री दक्षिणा मूर्ते, ऐसी ऐसी बातें इसमें आने वाली है। तो इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है कि आत्मज्ञान प्रदान करना। क्यों आत्मज्ञान देना है? क्योंकि आत्मज्ञान एक ही चीज है कि जिसके द्वारा हमें परम शांति उपलब्ध हो सकती है। ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति, ऐसा भगवत गीता का सिद्धांत है। अचिरेण अधिगच्छति, कल परसों 10 साल के बाद नहीं, ऑन द स्पॉट लिबरेशन इज हियर नाउ। मुक्ति कोई पांच साल के बाद मिलने की बात नहीं है, अभी है, यहां पर है, यही क्षण में है। इसलिए अचिरेण विदाउट विलंब, जिसको हम कहते यू आर नॉट सपोज टू वेट, जब ज्ञान होता है तो उसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है। क्यों इन्वॉल्व नहीं है? टाइम इज कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड एंड टाइम इज सेकेंडरी। इसलिए तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज सेंटीसेकंड, मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड। सेकंड का भी लाखवां हजारवां भाग, मगर फिर भी उसका नाम है सेकंड, फर्स्ट नहीं है। वाई? फर्स्ट इज क्रिएटर, द वन हु इज क्रिएटेड एंटायर यूनिवर्स ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स। तो ऐसा जो क्रिएटर है जिसको हम ब्रह्मा जी कहते हैं, वो फर्स्ट है और टाइम को सेकंड कहते हैं। एंड सेकंड इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, पर हम तो सेकंड तक ही लिमिटेड हैं। वैज्ञानिकों ने उसका सेकंड का सेंटी सेकंड सौवा भाग, हजारवां, लाखवां भाग भी ढूंढ निकाला है। और जो मैं सन की बात कर रहा था उसमें तो एक सेकंड का करोड़ों करोड़ों में भाग, इतनी प्रकाश की गति से भी ज्यादा गति से अणु को धकेला गया। कितनी दूर? 27 किलोमीटर, जिनेवा से लगाकर फ्रांस की बॉर्डर तक 7 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल जो बनाई उसमें। और हिग्स बोसन उसका नाम, जो वैज्ञानिक था, मगर बाद में उसको गॉड पार्टिकल के नाम से मशहूर किया गया। और विज्ञान का नई नई खोज करने वालों का सिद्धांत होता है, जब नई खोज होती है उसको कुछ नाम देते हैं। उन्होंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, और सोचने के बाद उनको लगा कि इसका नाम दे दो गॉड पार्टिकल। बाद में समझाऊंगा, मैं बार बार विचार मेरे मन में आता है, जब आप प्रार्थना करते हैं सुबह सुबह उठ के आप बोलते हो, समझते नहीं हम लोग। और हम कहते हैं संघात, संघात मतलब समूह। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुरीयम। क्या थे आगे? आगे बोलो। सुषुप्ति नित्यम, फिर क्या आता है? निष्कलम अहम न च भूत संग, भूत पंचमहाभूत संग, उनका जो जुड़ना, ये पांच महाभूत है, फाइव ग्रेट एलिमेंट्स, आकाश है, वायु है, अग्नि है, धरती है इत्यादि, और सबका समूह है होता है, उसका नाम पिंड है, और पिंड को हम शरीर कहते हैं, पंचमहाभूत से बना। नचभूत संग तसंग, जिसको यूनाइट किया जाता है, पांचों पांच तत्व मिलते हैं, समझना, पांचों पांच तत्व मिलते हैं तब शरीर बनता है। अच्छा, पृथ्वी जड़ के चेतन? अरे पृथ्वी जड़ के चेतन क्यों, वरना तो पृथ्वी कहती चेतन होती तो मैं गोल हूं, मैं चौरस नहीं हूं, मैं त्रिकोण नहीं, कहती नहीं कहती है। मगर पृथ्वी गोल ऐसा कौन कहता है? उसका दृष्टा जो देखने वाला है वो, और दृष्टा चेतन है, दृश्य चेतन नहीं। तो पृथ्वी जड़, हम देखते हैं, कहते हैं आकाश सर्वव्याप्त है, तो क्या आपको टेलीफोन आता आकाश का कि मैं सर्वव्याप्त हूं, मैं सूक्ष्म हूं? नहीं, आकाश स्वयं कह नहीं सकता है क्योंकि वो जड़ है। पृथ्वी जड़ है, वायु जड़ है, अग्नि जड़ है। तो ये जड़ अगर पांच हैं तो इसको मिलाता कौन है? जुड़ना चाहिए ना पिंड बनने के लिए, शरीर बनने के लिए। देयर यू नीड समथिंग विच इज नोन इज अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। चेतन तत्व कोई चाहिए जो सबको जोड़ता है। सूर्य बीच में है और हमारे नौ ग्रह इर्द गिर्द घूमते हैं, इन द सेम वे प्रोटोन न्यूट्रॉन सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स ग्रह के जैसे आजू बाजू घूमते हैं। मगर मैं समझाना ये चाहता हूं, जहां तक ये प्रोटोन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, वो सब जुड़ेंगे नहीं तो एक अणु नहीं बन सकता है। दैट एग्जैक्टली व्हाट साइंटिस्ट वॉन्टेड। देखो एक सिंपल बात कहता हूं, गुलाब का फूल है, मोगरे का फूल है, चंपे का फूल है, हार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुराना पड़ेगा ना सुई में? नहीं नहीं, पुराना नहीं पड़ेगा। वो फूल उड़ उड़ के सुई के अंदर घुस के दूरे में जाएंगे, नहीं ना। आपके पास प्लास्टिक की एक बकेट है, बाल्टी प्लास्टिक की, उसमें हैंडल लोहे का होता है, तो हैंडल बनाकर रख दो और प्लास्टिक की बकेट रख दो, हैंडल अपने आप घुस के जुट जाता है? नहीं, क्यों? बस कोई जोड़ने वाला चाहिए। घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। खाली मिट्टी से घड़ा बन जाएगा? क्या चाहिए अंदर डालने के लिए? सबसे पहले पानी, नहीं एक बाल्टी भर के पानी रख दो, मिट्टी का ढेर रख दो, पानी कूद के अंदर जाएगा? नहीं। तो कौन चाहिए? कुंभार चाहिए। समझ में मेरी बात आती? तो ये सन की जो बात करता हूं, उनका 50 साल से 2000 साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि पंच महाभूत जुड़ते कैसे है, वो चेतन तत्व कौन है, नहीं ढूंढ पाए। आखिर में अभी ढूंढा 22 जुलाई 2012 को, और ये खोज दुनिया की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है, और जिसका नाम दे दिया गया ये सिक्स्थ पार्टिकल, और उसका नाम है हिग्स बोसन या गॉड पार्टिकल। तो क्या ढूंढा उन लोग ने कि कोई चेतन तत्व ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इकट्ठा करे ना भाई, अणु बनेगा कैसे? और हम कहते पिंड बनेगा कैसे? तो ईश्वर नाम की कोई ताकत है जो पंच महाभूत को इकट्ठा करता पिंड बनाती है। और प्रातस्मरामी रुधि संस्फुरदात्म, वो आत्म तत्व है कि जिसको मैं प्रणाम करता हूं, जिसने पिंड बनाया है, और जिसमें से पिंड बना पंच महाभूत से, उसी से ब्रह्मांड बना। मेरा तात्पर्य मैं क्या समझना चाहता हूं, आप लोग के पार्श्वभूमि के इसलिए मैं तैयार करता हूं ताकि जो ऊंचाई पर मैं उड़ना चाहता हूं वहां तक आप मेरे साथ बनावटी पंख लगाकर भी उड़ सके। तो देखिए, ये सबके लिए ज्ञान आवश्यक है, और ज्ञान समय के भीतर नहीं है, समय से ऊपर है। मगर गीता ने कहा ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, पराम शांति से भी मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को एक ही शब्द से मतलब है, अचिरेण अधिगच्छति, विदाउट ब्रेक, विदाउट वेटिंग, क्षण मात्र भी वहां पर रुकना नहीं है। अचिरेण अधिगच्छति, परम शांति को प्राप्त होता है कौन? जिसको आत्मज्ञान मिलता है। और आत्मज्ञान है क्या? सबसे पवित्र है, उससे पवित्र और कोई चीज नहीं हो सकती। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते, पूरी धरा के अंदर ज्ञान से ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। यम लद्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, इतना पवित्र है ज्ञान, अगर वो प्राप्त हो गया तो सबसे बड़ा लाभ है, उससे बड़ा कोई लाभ हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ज्ञान प्राप्त करने से होगा क्या? हमारी योनि भ्रमण का जो चक्र है समाप्त हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त हो गया तो बार बार उत्क्रमण नहीं होगा और बार बार संक्रमण नहीं होगा। उत्क्रमण का मतलब है जीवात्मा, मन और पांच इंद्रियों को लेकर जब अंत समय में उठता है, मनस्रष्टाणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, उठेगा भी नहीं जीवात्मा, और नई मां के गर्भ में प्रवेश करके वो जो जड़ गर्भ है उसको पकड़ेगा भी नहीं, उसको कहते हैं संक्रमण। तो उत्क्रमण संक्रमण का चक्र समाप्त हो जाएगा, किससे? ज्ञान प्राप्त होगा तो सुख दुख जैसा द्वंद्व, उससे हमको मुक्ति मिल जाएगी और हम अभाव मुक्त हो जाएंगे। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसको कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस। मैं क्या कहता हूं? नो क्वेश्चन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। हमारे जीवन में नॉन एग्जिस्टेंस जैसी कोई चीज नहीं होगी। नॉन एग्जिस्टेंस मतलब अभाव। किसको? जिसके पास ज्ञान है। कि ज्ञान और आत्मा कैसा है? इट इज एवर एग्जिस्टेंस, इट कैन नॉट बिकम नॉन एग्जिस्टेंस। जैसे कि मैं स्वामी तदुरुपान, मैं इधर बैठा हुआ, आप लोग मुझे देख रहे हो, मरीज आप जिसको देखते हो, ये शरीर 50 साल पहले नहीं था। नहीं था मतलब उसका अभाव था, अभाव था मतलब नॉन एग्जिस्टेंस था। मरीज किसके संदर्भ में बात चल रही? शरीर के संदर्भ में। तो शरीर को नॉन एग्जिस्टेंस हो सकता है, और 100 साल के बाद मृत्यु के बाद फिर भी अगेन अभाव मतलब नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगा। किसका? शरीर का। मगर आत्मा का नहीं हो सकता। वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और वो ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमको ये प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, इसलिए हम लोग ज्ञान के बारे में प्रयत्न करते हैं। जीवन मुक्ति का सबसे परम लाभ है आत्मलाभात परम लाभो नास्तीति मुनियो विदुः। अब देखिए ये जो हमारा विषय है ये अपरोक्ष अनुभूति का विषय है, प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं, परोक्ष अनुभूति नहीं, अपरोक्ष अनुभूति जिसको आत्म साक्षात्कार से भी नवाजा जाता है, मगर इसमें अपरोक्ष अनुभूति करने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता होती है और वो होती है सद्गुरु की आवश्यकता। कबीर उसको नवगुरा कहते हैं जिसको गुरु नहीं उसको, और गुरु शब्द में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, शरणागति होनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति और शरणागति शून्य जो व्यक्ति होता है उसके लिए ये बात आगे नहीं चलती है, जिसको हम अपरोक्ष अनुभूति आत्म साक्षात्कार कहते हैं। वो आत्म सौंदर्य के स्वप्न को भी स्पर्श नहीं कर सकता है। और एक बात ये स्तोत्र के द्वारा हमको बार बार ठोस ठोस समझाई जाएगी कि भाई तर्क के सहारे, तर्क के तराके के ऊपर या तर्क की नौका के द्वारा प्रयास मत कीजिए, तर्क के द्वारा आत्म साक्षात्कार होने वाला नहीं है। नदी के किनारे जाते हैं, सागर के किनारे जाते हैं, नदी की रेत उसको रगड़ने से कोई तेल नहीं निकलने वाला है, और पानी को मथने से मक्खन मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही बाकी के जो प्रयास हैं छोड़ दीजिए, अगर करना है जीवन में कुछ भी तो मात्र ज्ञान प्राप्ति करनी है। और इसलिए गुरु की गरिमा और उसकी महानता का गुणगान गाने के लिए प्रत्येक श्लोक के अंत में ऐसा आएगा, तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमइदं श्री दक्षिणा मूर्तये। अब ये जो आपका जो विषय है दक्षिणा मूर्ति स्तोत्र, क्या इसको महत्व दिया गया है? आप सद्भागी हैं, ऐसे ऐसे विषय को उठाने वाली संस्थाएं भी महान भाग्यशाली हैं। ये संस्था ना होती तो ये विषय नहीं उठता था यहां पर। सबसे पहला पूरी पृथ्वी के ऊपर भूमंडल में तत्वज्ञान अगर किसको दिया गया है तो ब्रह्मा जी के चार पुत्रों को, ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र थे और उनको ये ज्ञान सबसे प्रथम दिया गया। तो ब्रह्मा जी के जो चार मानस पुत्र हैं, सनक है, सनत, सनंदन और सनातन, ये चारों चार बड़े बड़े ऋषि हो गए। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी मतलब द वन हु इज नोन इज क्रिएटर, जिसको ये सृष्टि के रचयिता हम कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्रों को ये ज्ञान सबसे पहला दिया गया। मगर ज्ञान दिया किसने? तो ज्ञान दिया भगवान शंकर ने। तो भगवान शंकर ने ज्ञान देने के लिए ईश्वर हैं, ज्ञान देने के लिए कोई रूप लेना पड़ता है। ये कमरे में बिजली के वायर तो जाते हैं, बिजली तो है, मगर बिजली अभिव्यक्त नहीं हो सकती है। तो बिजली को क्या चाहिए? बल्ब चाहिए, टंगस्टन वायर चाहिए, अंदर वैक्यूम चाहिए। व्हाई? फॉर मैनिफेस्टेशन। बिजली तो है मगर अदृश्य हाथ से नहीं दिखाई देती बिजली, मगर वो बिजली आपको मदद करना चाहती है, वो बिजली आपके ऊपर कृपा करना चाहती है, वो बिजली आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहती है। तो बिजली अगर चाहेगी, बिजली मतलब शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, अगर आपके ऊपर कृपा करना चाहती है तो अदृश्य होते हुए भी उसको दृश्य बनना पड़ेगा, टंगस्टन वायर से गुजरना पड़ेगा, उसको एक फॉर्म लेना पड़ेगा। तो बिजली ने एक फॉर्म लिया एंड देयर इज नोन एज लाइट। लाइट इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू कांट सी इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन सी लाइट। इन द सेम वे ईश्वर जो तत्व है वो तो अदृश्य है, मगर ईश्वर मदद करना चाहता है, कृपा करना चाहता है ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्रों को, तो उसने एक रूप लिया और वो शंकर भगवान जैसा रूप था और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था, इसलिए उसको कहते हैं दक्षिणाभिमुख, दक्षिणा मूर्ति। जिस मूर्ति जो स्वरूप लिया शंकर भगवान ने उपदेश देने के लिए ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्रों को, उनका मुख दक्षिण दिशा में था। दक्षिणाभिमुख प्रोक्त शिवो सौ ब्रह्मवादिनः, जो ब्रह्मवादी बड़े बड़े ज्ञानी हैं वो ऐसा कहते हैं जिसका मुख, जो मूर्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है उसको ही शिव असौ शिव भगवान शंकर कहा जाता है, और दक्षिणाभिमुख शिव है ऐसा शास्त्र का उद्देश्य है। इसलिए यहां पर भी गुरु मूर्ति है उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, और शंकर भगवान ने ये ज्ञान तत्वज्ञान देने के लिए अपना मुंह दक्षिण दिशा की ओर रखा था, इसलिए इसका नाम है दक्षिणा मूर्ति स्तोत्र। दक्षिणा का और एक अर्थ बताना चाहूंगा आपको। दक्षिणा मतलब दिव्य, जो दिव्य दृष्टि होती है उसको दक्षिणा दृष्टि भी कहा जाता है, दिव्य दृष्टि। जैसे कि गीता में आता है विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु कहो दिव्य दृष्टि कहो अलौकिक दृष्टि कहो, एक होते लौकिक दृष्टि, एक पारलौकिक दृष्टि और एक अलौकिक। तो अलौकिक दृष्टि कहो, दिव्य दृष्टि कहो और ज्ञान रूपी दृष्टि कहो, बात सब एक ही है। तो दक्षिणा दूसरा नाम है उसका दिव्य दृष्टि का, और जिसके ऊपर दक्षिणा दृष्टि होती है उसकी वासना जल के खाक हो जाती है। तो सद्गुरु ऐसे हैं यहां पर, तो दक्षिणामूर्ति वो जो शिष्यों की ओर देखेंगे और जो शिष्य के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ गई उसकी वासना भस्म हो जाएगी। तो वासना भस्म होने से क्या होता है, वासना प्रक्षयो मोक्ष। क्या चाहिए जीवन में हमको, अगर कोई देव देवी की पूजा करेंगे, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, माता जी अगर प्रसन्न हो गई तो इच्छित वरदान दे सकती है। जितने देव और देवियां हैं 33 करोड़, उसमें से एक भी आपने प्रसन्न कर लिया तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। सद्गुरु प्रसन्न हो गया वासना को भस्म कर देगा, पूर्ति की तो बात नहीं है, वासना को जला के खाक कर देगा। और वासना ही ना रही तो पुनर्जन्म का सवाल नहीं है, और पुनर्जन्म नहीं होगा तो बस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और इसलिए शंकर भगवान की जितनी जितनी प्रार्थनाएं हैं इसमें ऐसी प्रार्थना की जाती है कि हमारी वासना को खत्म करो, पर वासना नाम शब्द प्रयोग नहीं कहा गया है, हमारे सूक्ष्म शरीर को भस्म करो। और सूत्र में आता है लिंग शरीर को खत्म करो, लिंगात्मकम हर चराचर विश्व रूपी। वेद सार शिवस्तव पढ़ेंगे तो उसमें अंत में ऐसा आता है कि हम प्रार्थना करते हैं हमारे लिंग शरीर है, एक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म मतलब लिंग शरीर है, और भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो लिंग शरीर का संहार करते हैं, मतलब कि सूक्ष्म। तो सूक्ष्म जो देह है वही तो पुनर्जन्म के लिए आगे जाता है। सूक्ष्म शरीर का मतलब ही है जीवात्मा और मन और 5 इंद्रियों का संघात जो जाता है वो। अब ये बात बताना चाहता हूं, और एक महत्व की बात है, ये जो आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है स्तोत्र बहुत गहन है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वार्तिक लिखा गया है, वो भी शंकराचार्य जो वो परंपरा के अंदर दूसरे शंकराचार्य आए, और वो शंकराचार्य उनका नाम था सुरेश्वर आचार्य, उसने मानसोल्लास नाम का एक कमेंट्री लिखी, टीका लिखी, और टीका ऐसी टीका को संस्कृत में वार्तिक कहा जाता है। तो सुरेश्वर आचार्य जी ने लिखा वार्तिक, शृंगेरी मठ के वो शंकराचार्य थे वो परंपरा के भीतर, मगर ये जिसकी बात करता हूं वार्तिक लिखा और सुरेश्वराचार्य थे कौन, तो सुरेश्वराचार्य पूर्वाश्रम में उनका नाम था विश्वरूप, पूर्वाश्रम का संन्यास के बाद सुरेश्वराचार्य बने, तो विश्वरूप था वो नर्मदा नदी के किनारे पर जबलपुर के पास एक माहिष्मती नगरी थी, वहां पर बिराजते थे, और प्रकांड कर्मकांडी कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, और उनका नाम विश्वरूप था, पूरे विश्व में छाए हुए थे इससे, इसलिए विश्वरूप से वो ख्यातनाम थे, अजय थे, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था शास्त्रार्थ के अंदर, इसलिए उसका नाम हो गया था मंडन मिश्र अपने सिद्धांत का मंडन करने वाले, एक होते खंडन करने वाले, एक होते मंडन करने वाले, मगर इतने बड़े विद्वान थे वो, तो उसका नाम हो गया मंडन मिश्र, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था। अपने गुरु ने आज्ञा दी, कर्मकांडी थे कुमारी भट्ट, उसने आज्ञा दी कि ये जो आदि शंकराचार्य एक एक जगह से पूरे भारत में प्रवास कर रहे हैं उसके साथ शास्त्रार्थ करो और उसको परास्त करो तो आप सबसे बड़े बन जाओगे। उसको कहते हैं शास्त्र में प्रथम मल्ल युद्ध। जैसे कि अभी जो ओलंपिक गेम्स हो गई उसमें लास्ट जिसने गोल्ड मेडल लिया है ना, अगर मैं सबसे दुनिया का बड़ा बनना चाहता तो बस जिसने गोल्ड मेडल लिया उसको ही हराना है, वो बाकी के वो जिसको जिसको हरा के आया है उसके साथ मेरे को कुछ नहीं करना है, तो प्रथम मल्ल उसके साथ युद्ध करना है। तो ये कुमारिल भट्ट ने उसको कहा मंडन मिश्र को कि आप शंकराचार्य को परास्त कर दो तो हिंदुस्तान में भारत में सबसे बड़े ज्ञानी आप ही कहलाओगे। फिर उनका शास्त्रार्थ हुआ सब, और शास्त्रार्थ हुआ और एक बहुत अच्छी शास्त्र में बात है, हम कहते हैं क्रिकेट की मैच में जीत गए हार गए तो गए उनका तो होम ग्राउंड था, ग्राउंड कैन नॉट बी पार्शियल माय डियर सर टू एनीबडी।